तस्मै श्री गुरवे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महाबदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिशे नमः गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं अङ्गश्यामलिं छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जडं जागृतरोचिसां विदधतं पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं श्रीमद्भागवतम एकादश स्कंद वसुदेव महाराज जी ने नारद ऋषि से प्रश्न किया, ये दुस्तर माया को सहज ही किस तरीके से पाया जा सकता, और इसी को महाराज नेमी पूछ रहे हैं नौ जगंद्रों में से, और नौ जगंद्रों में से प्रबुद्ध वे इसका उत्तर दे रहे हैं। यदि कोई तरना चाहता है तो सद्गुरु के चरणों में आश्रय ग्रहण करें, उससे दीक्षा और भागवत धर्म के संबंध में जाने और उसका विधिवत पालन करे, श्रद्धा भागवते शास्त्र निंदा अन्यत्र चाति मनोवाक कर्म दंड गुरु सतं समदमादि भागवत भागवत और भागवत लीला अथवा तत्व युक्त जितने भी ग्रंथ हैं सद ग्रंथ हैं उनके प्रति श्रद्धा हो, वे उसका श्रवण करें, मनन करें, दूसरों के पास में कीर्तन करें, किंतु दूसरे शास्त्रों की निंदा न करें, उसे बचें, क्योंकि उस अधिकारी के लिए वो शास्त्रों का निर्माण व्यास जी ने ही किया है, इसलिए उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए। मन वाक्य और कर्म का संचय होना चाहिए, वाक वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा उदरोपस्त वेगम एतान वेगान जो विषहेत धीर सर्वमपि माम पृथ्वी शशिष्य, जिसको भजन करना है वे मन को वेग को, क्रोध के वेग को, जिह्वा और उदर के वेग को, इन सब वेग छह वेग हैं, इनको यदि धारण करे तो वो जगत, किंतु इतना सहज नहीं है। श्रवण कीर्तनम ध्यान हरे अद्भुत कर्मण जन्म कर्म गुणा नांच तदर्थे अखिल चेष्टित। भगवान के नाम रूप गुण लीला का श्रवण ध्यान स्मरण कीर्तन जो भगवान ने कृष्ण लीला में अद्भुत अद्भुत कर्म किए हैं, रामलीला में जो किए हैं परम करुण रस की वर्षा की है, ऐसे हरि के अद्भुत पराक्रम ऐश्वर्य और माधुर्य युक्त लीलाओं का श्रवण कीर्तन स्मरण करने से एवं कृष्णा कृष्ण आत्मनाथेषु मनुष्येषु सौहृदं परिचर्यां च उभयत्र महत्सु नैषु साधुषु। एक प्रकार कृष्णा कृष्ण एवं कृष्णेर आश्रित वो कहा गया है ना गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदात्मने कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय। कृष्ण अपने भक्तों से भी अपने भक्तों के भक्तों का पर अधिक कृपा करते हैं। कृष्णाश्रित मनुष्यों के प्रति सौहार्द मैत्री भाव, स्थावर जंगम के प्रति विशेषता, मनुष्य इत्यादि के प्रति उनमें भी स्वधर्मशील व्यक्ति परायण और विशेषता के विशुद्ध रूप में कृष्ण की भक्ति करने वालों का क्योंकि प्रति ऐसे भागवतों के प्रति परिचर्या करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, आदेश पालन करेंगे। जब परस्परानुकथनम पावनम भगवत जस मिथो रति मिथो भक्ति पुष्ट मिथ आत्मना जो पहले कहते हैं भागवत लोग उनके साथ मिल करके भगवान के अद्भुत पराक्रमशील और माधुर्यमय लीलाओं का परस्पर कीर्तन कर परस्पर आत्मा का अनुराग परस्पर तुष्टि परस्पर ये दुख निवृत्ति आदि की शिक्षा करेंगे भागवतों के निकट। दूसरों को भगवान अपने भगवान की लीला का स्मरण करेंगे और दूसरों को भी भगवान की लीलाओं का स्मरण कराएंगे क्योंकि भक्ति के द्वारा ही भक्ति होती है, साधन भक्ति के द्वारा भाव भक्ति के द्वारा प्रेमा भक्ति होती है। ऐसे जो भागवत होते हैं माया पर चुटकी बजाते हुए पार हो जाते हैं और उनकी स्थिति क्या हो जाती है उसको यहाँ पर बतलाते हैं। क्वचित रुचन्ति कभी कृष्ण के विरह में रोते हैं, क्वचित अच्युत चिंतया क्वचित रुदन्ति क्वचित हसन्ति कभी हंसते हैं कृष्ण मिल गए उनको देख करके भावावस्था में हंसने लगे, उनकी लीलाओं को देखने कर देख करके हंसने लगे। जैसे कि कृष्ण वृंदावन में खेल रहे थे, केशी दैत्य आया, उसके पहले मधुमंगल ने कहा यदि तुम अपनी बांसुरी दे दो और मोर मुकुट दे दो तो तुमको कोई पूछेगा नहीं, सभी लोग हमको ही लड्डू पूड़ी सब खिलाएंगे। कहे ठीक है ले लो। उन्होंने अपनी बंसी दे दी और अपने
मोर मुकुट
इत्यादि उनको पहना दिया। इतने में केशी हिनहिनाता हुआ आया और कहा कि यही कृष्ण है, मोर मुकुट है और बंसी है, चिन्ह जानता था ये। बस उसको दुलत्ती ऐसे झाड़ी कि लगी नहीं बाय चांस और
उसके हवा से बहुत जाकर गिर पड़े।
इसके बाद में कृष्ण ने मधुमंगल को पीछे कर लिया। तो ये देख करके भक्त लोग हंसते हैं। जब कभी अंतर्ध्यान कृष्ण हो जाते हैं तब रोते हैं। बदंती अलौकिकम, अलौकिक बातें करते हैं, आदमी समझेगा कि वो पागल हैं। कभी आनंद में भाग करके नृत्य करने लगते हैं, इस तरह से कभी एकदम चुप हो जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। उनका चरित्र दैव भी नहीं समझ सकते मनुष्य। ये है भागवत, भागवत धर्म। ये कृष्ण के द्वारा शिक्षित हैं, कृष्ण की प्रेरणा से। नारद जी ने वसुदेव महाराज जी को और नेमी महाराज को नव जगेंद्र ने ये भागवत के द्वारा, भागवत धर्म के द्वारा सहज से सहज रूप में मनुष्य पार कर सकते हैं माया।
दामोदर महाराज,
कुलवेय गौरचंद्र राधिका कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदवंताय नमः। Continuing from yesterday morning, Maharaj Nimi inquired from the Navayogendras, what is the easy method to cross this very powerful illusory potency called Maya? Devaprabhuda Maharaj replied, if someone desires to cross the ocean of nuisance, then he must take shelter at the feet of a bona fide spiritual master, accept initiation from him, imbibe his teachings, and follow all the rules and regulations that are given by the Guru and scripture. Then once you give body, mind and words and completely surrender to the spiritual master, once you have faith in all the books which describe this process of Bhagavad Dharma, and once you hear those instructions, repeat those instructions to others and also deeply consider them within the mind. Also, as one should have faith in books which delineate Bhagavad Dharma, one should not criticize other books. Why? Because Vyasa has described them, those other literatures, for persons of different qualification. Therefore, to do bhajan, one should control the six senses, the six urges, vacha vegam, manasa krodha vegam. But to do so is not so easy. And one who can control these six urges, he is Jagadguru, or spiritual master of the whole world. That includes the mind, the power of speech, the tongue, the belly, the genitals, and anger. If one should hear, repeat, and meditate on these very powerful pastimes of the Supreme Lord, his activities are most wonderful. Just see, sometimes he performs activities which are full of opulence, like Ramchandra, etc. And sometimes he performs activities which are full of sweetness, like those of Sri Krishna. Therefore, one should worship and remember Krishna and also the devotees of Krishna. Guruve Gaura Chandra Radhika Tadale, Krishna and Krishna Bhakta, Krishna and his devotees, or Krishna and those who have taken devotees of Krishna. One should have compassion and friendship, towards all living entities, moving and not moving, as well as animals and humans, but especially one should have moods of devotional service to the devotees of Bhagavan. Every 11th canto says, paraspara anukatanam bhavanam bhagavatayas. The devotees paraspara anukatanam. The devotees should, when they meet between themselves, they should discuss this Harikatha. By doing so, what will happen? They will encourage Atmanurag, attraction towards Krishna between themselves. Also, by discussing Harikatha amongst themselves, the devotees will cross over all type of obstacles. Therefore, not only this, in doing so, the devotees themselves remember Bhagavan, and they
help others remind.
In doing so, they themselves remember Bhagavan and enable others to also remember them, remember him. Bhakti samjatiya bhakti, because devotion only comes from devotion. Devotion is attained by the association of devotees. By this practice of sadhan bhakti, one achieves bhava bhakti, and by cultivation of bhava bhakti, one achieves prema bhakti. The character of such devotees is exalted. Even the demigods cannot understand them very easily. Sometimes they cry when they experience separation from the Lord. Sometimes when they meet him, they laugh very loudly. Sometimes they see different pastimes which causes them to laugh. Like one time, Maru Mangu, that's Krishna's friend who's always joking with him. He said, "Ya Krishna, if I had your flute and bamsi, then no one would even ask about you. All ladus, all sabjis, all puris would come to me. So give me them and you'll see." So Krishna gave his peacock feather and flute to Madhu Mango. So Madhu Mango was moving around there trying to collect ladus when Keshi, the demon Keshi, came. He had heard, "Hey, look out for Krishna. How will you recognize him? He has a peacock feather and a flute." Then Keshi died and the demon, he saw Madhu Mango with his flute and peacock feather. He thought, "This must be Krishna." So when he came towards Madhu Mango and tried to kick him, just the air from Keshi's body made Madhu Mango fall flat. Then he was crying, "Krishna, save me." So Krishna came, took back the flute and the peacock feather and put Madhu Mango in safety. Then he went to fight with the demon. Seeing these activities, the devotee laughs very loudly. Outside persons think, "Oh, he is completely mad." Sometimes he dances, the devotee in such a stage dances in ecstasy. Sometimes he is silent. This is Bhagavad Dharma. And this is the position of the devotee who is absorbed in that. This Bhagavad Dharma, or the science of devotion, was first taught by Krishna to the living entities of this world. And through this epic succession, it came to Narada. And now it is instructing this same Bhagavad Dharma to Vasudev Maharaj. How? By telling the history of how Nimi Maharaj inquired from the Navayogendras. So by this Guru Parampara, which originally comes from Krishna himself, one can understand and practice this Bhagavad Dharma.
Bahut jaldi khatam kar diya. Bahut sankshep mein. Isme kahin pucha hai कि माया क्या है?
पौरे आचे लास्टर दिखे
हाँ
लास्टर दिखे आस बे ये री लास्टर दिखे आस बे
और लास्ट अंत में
हाँ
बार करो तो माया क्या है? भगवान अपनी जी शक्ति के द्वारा जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय करते हैं, वो माया है। अपनी जी शक्ति से भगवान जीवों में आत्मबुद्धि, मैं शरीर ही मैं हूं, मेरा ये नाम है, मेरा ये रूप है, मेरा है ये गुण है, देह में आत्मबुद्धि कर देना ये माया है। सबसे बड़ी जबरदस्त माया भगवान ने पुरुषों के लिए स्त्रियां और स्त्रियों के लिए पुरुष, ये माया है जबरदस्त। मुनियों के लिए भी, विश्वामित्र मुनि ब्रह्मा के लिए, शंकर के लिए भी अजय है। ये यदि ये नहीं माया रहती स्त्री रूप, तो रामायण का युद्ध, महाभारत का युद्ध सब किसके लिए हुआ? स्त्रियों के लिए युद्ध हुए। इसलिए इसके फेर में पढ़ करके बड़े बड़े मुनि लोग अपना धर्म कर्म सब छोड़ करके साधारण सन्यासियों की बात क्या कही है? बड़े बड़े ऋषि विश्वामित्र जैसे 10,000 वर्ष तपस्या की ओर एक क्षण में उर्वशी का नित्य देखते ही कहां चले गए। अरे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा अपने हाथों से एक कन्या उत्पन्न की और उसके सौंदर्य पर लट्टू हो गए। इसलिए माया को तरना है तो इससे तरो। पुरुष लोग स्त्री रूपी माया से और स्त्रियां भी पुरुष रूपी माया से ये सर्वथा बचे, तब तो ये माया से तर सकते। चैतन्य महाप्रभु अर्थात कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, सचिनंदन गौधरी के, उन्होंने थोड़ा सा सरल कर दिया। ये बेचारे बद्ध जीव माया को जीतने में असमर्थ है। जो जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, जिस अवस्था में है, जिस रूप में है, वहीं से हरि नाम करें। यदि कोई अत्यंत व्यभिचारी है, अजामिल जैसा, अपिच्छे सुदुराचारो, अत्यंत दुराचारी अजामिल जैसे है, बस नाम संकीर्तन करने से उसका उद्धार हो जाएगा। सहज तरीका बतलाया महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी को और शिलरूप गोस्वामी को शिक्षा दी, सहज ही माया को कैसे पार किया जा सकता है और किस प्रकार से प्रेम भाव भक्ति और प्रेम भक्ति लाभ हो सकती है। यहां तक का जहां तक जीवों का अधिकार है, मंजरी भाव तक को प्राप्त किया जा सकता है। कृष्ण ने अथवा उनके पहले नारद इत्यादि ऋषियों ने, किसी ने भी ये सब चीजें नहीं बतलाई जी। इसलिए महाप्रभु करुणा से भी करुण है, जीवों के लिए ये सब किया। आज उन्हीं चैतन्य महाप्रभु की कृपा से और उनकी प्रेरणा से रूप गोस्वामी और अब तक ये अद्भुत विचार जो कभी देखा सुना नहीं गया, अनर्पित चरण चिरात करुणे आओ, उसको चैतन्य महाप्रभु ने सहज नाम संकीर्तन के प्रभाव से हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति रहे, स्पष्ट रूप से कहा। तपन मिश्र को कहा, जाओ साध्य साधन नहीं जानते हो, हरि नाम करो, यही साधन है, यही साध्य है। हम लोगों के लिए भी यही उपदेश रखा है, माया को भाई जीतो, जीतने की चेष्टा मत करो, गुरु पदाश्रय करके उनकी सेवा करो और निरंतर हरि नाम करो। हरिदास ठाकुर जैसे हरिदास ठाकुर के यहाँ माया दो दो बार आई और अन्यास ही उसको जीत लिया, इसलिए माया से तरने का यही उपाय है। विशेष करके यदि माया को जीत करके प्रेम चाहते हो, रूप गोस्वामी के उपदेशामृत को और रघुनाथ दास गोस्वामी के मन शिक्षा को गले का कंठहार बना लो, प्रभुपाद कहते हैं कि सहजिया लोग ये उपदेश सामरी से बड़ा डरते हैं। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये जो शिक्षाएं हमने दी महा रूप गोस्वामी ने, ये गृहस्थों के लिए है, तागी लोगों के लिए नहीं है। क्यों? वो तो घर छोड़ने के पहले ही ये सब संयम और जब सब कुछ कर चुके हैं, उनके लिए नहीं। और हम लोग कहां सन्यासी हो करके भी उलट पलट खा रहे हैं, कभी ऊपर कभी नीचे कभी कुछ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने जो रास्ता बतलाया उपदेशामृत का, विशेष करके सब शिक्षाओं का सार तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानु क्रमेण रसना मनसीनी योज्य तिष्ठन ब्रजे जनानुरागी तनानुरागी कालम नएद अखिलामी इत्युपदेश सार। रूप गोस्वामी कहते हैं सब शिक्षाओं का सार जो हमने चैतन्य महाप्रभु से सुना है, सनातन गोस्वामी से सुना है और रामानंद से सुना है, स्वरूप दामोदर से, सब शिक्षाओं का सार यही है। तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानि क्रमेण मनसा रसनानि। कृष्ण के जो नाम है राधा दामोदर, राधा रास बिहारी, अखदमन जसोदा नंदनो नंद सुनो कमल नयन गोपी चंद्र वृंदावन, ये सब कृष्ण के नाम है।
कृष्ण गोपाल हरे मुकुंद,
इन नामों का कीर्तन करते हुए इन नामों में जो लीला सन्निहित है उसको मनी मन में स्मरण करते हुए, दामोदर नाम में जो लीला है उसका स्मरण करो और जीवा से उसका कीर्तन करो। तन्नाम रूप चरितादि सुकृतनानि अनु 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 माने क्या? पहले गुरु निकट में श्रवण करके तब अच्छी तरह से भली भांति ब्रज में रहना होगा। यदि ब्रज में नहीं रह सकते तो मन ही मन में चिंता करो, वृंदावन में हूं, जमुना कलकल बह रही है, जमुना के दोनों किनारे में बेली चमेली जूई के फूल खिले हैं, राधा कृष्ण वहां पर हैं, कदम्ब वृक्ष के नीचे बैठे हैं, राधा जी पान की बीड़ी मुख में दे रही, मैं उसी वृंदावन में हूं और वहीं पर भजन कर रहा हूं। यदि स्वर्गत हो सके तो बहुत अच्छी बात है और यदि किसी कारण से अर्थ मरता है तो मन ही मन में चिंतन करो। तदानुरागी नकी, तदानुरागी जनानुगामी, भगवान की लीला कथाओं में भगवान में जो अनुरक्त है ऐसे महापुरुषों के जनानुगामी जो ऐसे जन है, कालम नहीं उनकी शुश्रूषा, उनकी हरि कथा सुनने में, उनके अनुगत्य में हरि नाम करने में, भागवत श्रवण करने में जिनका जीवन व्यतीत होता है, यही अंतिम सार शिक्षा है। रघुनाथ दास गोस्वामी की मन शिक्षा मत भूलो। गुरु गोष्ठे गोष्ठालयेषु सुजने भूसुरगणे समंत्रे श्री नामनी ब्रज जुव दंड शरणे सदा दंभम हित्वा कुरु रतिम अपूर्वाम
अतितराम अये शांत भ्रात चतुर्विभाज धीत पद।
गुरु जी ने मंत्र दिया और कर सबके तो बात दो। गुरु जी ने मंत्र दिया कार्य तीन बार करना दिन रात दिन में सवेरे दो भाग को शाम को, इसको त्रिसंध्या करते हैं। हम समझते हैं कि इसको कितने लोग करते हैं मन से, मैं नहीं कर सकते। इसको अवश्यंभावी होना चाहिए। त्रिकाल संध्या महाप्रभु स्वयं आचरण करके दिखलाया, तीन बार स्नान करते और तीन बार अन्न करते। हमारे गोस्वामी लोग इतना उन्नत होने पर भी करते थे, इसलिए ये सबको करना नहीं भूलना चाहिए। नाम गुरु
गोष्ठ
शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु और गुरु
गोष्ठ
जहां पर की गोष्ठ है नंदबाबा जसोदा इत्यादि सब रहते हैं। गोष्ठ में जो रहने वाले हैं वो सुजन माने और संप्रदाय के भी जो वृंदावन में रहते हैं वो सुजन, वहां के ब्राह्मण पूर्ण रूप से विशुद्ध भक्ति नहीं करने पर भी भक्ति तो करते ही हैं, उनको भी। और सबसे अधिक अपना मंत्र जो गुरुजी ने दिया है और दीक्षा का मंत्र और नाम प्रीति पूर्वक करो, राधा कृष्ण जुगल की उपासना करो। और दूसरे श्लोक में कहते हैं कि सची नंदन को कृष्ण ही समझो, गुरु को उनसे अभिन्न समझ करके भजन, माया से सहज ही तर जाएगा, कृष्ण प्रेम हो जाएगा और तुम्हारा जन्म सफल हो जाएगा। वंशा कल्प तुभ्य
continuing. The Navi again is instructed, what is the illusory potency of Maya? It is that potency by which Bhagavan creates this material world, maintains it and destroys it. By this Maya Shakti, he covers the individual living entity, or the Jiva Shakti. Under the spell of the illusory energy, the soul forgets his spiritual position and thinks in terms of I am mine. My body, my intelligence, my name, my wife, my properties. This is called Maya. The personified form of illusion is a woman, if you're a man. And if you're a woman, the personification of illusion is the form of a man. That Maya is very powerful. Even it's unconquerable for great personalities like Lord Brahma and Lord Shiva. Just see my illusory potency in the form of a woman. Who caused the Ramayana and Mahabharata wars? Woman. Therefore, what to speak of ordinary sannyasis, even great rishis like Vishwamitra, they left their bhajan, karma, dharma, everything, being deluded by the form of a woman. Vishwamitra performed 10,000 years of austerities, but when he saw the dancing of Urvasi, he fell down. Lord Brahma, he chased after his own daughter, seeing her beauty. Therefore, for men, women is illusion, and for a woman, man is illusion. One who can save themselves from women, that person can cross the illusory potency. Therefore, Mahabhu is little kind. He could understand the living entity, the conditioned soul, cannot cross the illusion potency very easily.
I'm telling you to not proceed towards me, Maya.
Shashi Kalagri is telling you, look towards there.
Ektu aage boshe jato, ektu aage boshe. Aur aage.
Yes, he can cover, but.
So Mahaprabhu knew that conditioned soul cannot go very easily from Maya. Therefore Mahaprabhu gave the concession, whatever condition you are in, simply chant Harinam. Even the most fallen souls, like Ajamil, could achieve perfection by this Harinam Sankirtan. Krishna says, Apichet Sudura Charo Bhajate Mama Nanyava. Even the most fallen person can achieve perfection by the mercy of Harinam. Therefore, Param Vijayate Sri Krishna Sankirtana. All glories to the chanting of the holy name of Sri Krishna.
But as he sits in the back.
Mahaprabhu gave all these instructions how to cross Maya when he instructed Sanatana Goswamis and Rupa Goswami. By following these instructions on Sadhana Bhakti, one can achieve Bhava Bhakti, then finally Prema Bhakti, and cross beyond the influence of the illusory energy. By these instructions, Mahaprabhu enabled the Jiva to achieve the topmost qualification of achieving this service of Radharani, that is called Manjari Bhava. Mahaprabhu is so much merciful. Even he never instructed great devotees like Narad on the attainment of Manjari Bhava. Therefore, how merciful is Chaitanya Mahaprabhu?
I have one question.
By the mercy of Mahaprabhu, especially through the heart of Sri Rupa Sanatana Goswami, that which had never been seen or heard before,
Manjari is one type of gopi.
Became attainable for the living entities of this Kali Yuga. And we can achieve all this by Harinam.
Manjari is a gopi. They are not gopi, they are gopi too. They are also gopi, not gopi.
In this age of Kali Yuga, there is no other way. No other way to achieve perfection than the chanting of the holy name of Krishna.
They are not Samhavet
Chamai.
They are not Samhavet Chamai. They are not Samhavet Chamai. They are not Samhavet Chamai. They are not Samhavet Chamai.
All the chanting of the holy name
mentioned clearly in here.
The chanting of the holy name is the process and the ultimate perfection.
I was singing Tadastra Jiva. He has no adhika for Samhavet Chamai.
Therefore, why should Gurudev said, simply remain engaged in the service of the spiritual master and chant the holy name continuously, then you can achieve all perfection. Just like Sri Haridas Thakur, Maya Devi personified, personally came to catch Haridas Thakur on two occasions, but he escaped from
her. Dancing, said,
there will be one prema to the feet of Krishna. You will have to remember and follow Rupa Goswami's Upadeshamrita and Sri Raghunath Goswami's Manashiksha. Indeed, these two books should be like a necklace around the necks of the devotees. These two books, Upadeshamrita and Manashiksha, are like thunderbolts for the sahajas. Sri Bhaktivinoda Thakur said, actually these preliminary instructions that I am giving, and Rupa Goswami has given an Upadeshamrita, this is for the Grihasthas, because it's to be considered that a sannyasi who has left everything should already have done those preliminary instructions. Then what is the essence of all instructions? Tanava rupa charatati sukhitananu smidyo karmena rasana manasina yojan tistan rajay tadanuragi tananugami kalam daya dakhila bhadiya pradesha saran. The essence of all instructions is one should chant by the tongue Krishna's name, forms, qualities and pastimes. And what you chant, you should remember within the mind. One should stay in Vrindavan under the guidance of Rasik Vaishnava. And under their guidance, one should constantly remember the service the eternal associates of Krishna perform towards him. This is the essence of all advice. Therefore, all these instructions that Sanatana Goswami heard from Mahaprabhu, or that Ramananda Roy heard from Mahaprabhu, all these instructions, we follow them. The essence of all those instructions is that verse of Rupa Goswami. Therefore, Rupa Goswami is Agadamana Yasoda Nandana Nanda Suno. All these names of Krishna are associated with his different pastimes. For example, when the devotee chants the name like Radha Damana or Radha Rasbihari, then these pastimes associated with those names will appear within the mind. Therefore, Rupa Goswami said Anu three times, Tadanugami, means Anu means Anu guidance, Anu means continuous. Therefore, here, Anu means one should hear constantly from the spiritual master and remain in their guidance. And one should stay within Vrindavan. If one cannot stay within Vrindavan, one should always remember Vrindavan within the mind. Which Vrindavan? If you could remember by your position of Vrindavan by Sarup, that is fantastic. Which Vrindavan? Where the Yamuna is flowing nicely. On both banks there are so many trees like Veli and Chameli and Yui. Radha Krishna seated underneath a Kadamba tree. Shrimati Radhika is putting tambour or Vivanad in the mouth of Krishna. If you can stay at Vrindavan, that's the best. If you cannot do that, anyhow, always engage yourself in remembering Vrindavan. But only staying in Vrindavan, you'll have to take the associations of those who have deep attachment for Sri Radha and Krishna, and constantly hear the Harikatha which emanates from their lotus mouth, and under their guidance, perform the bhajan. This is the last and the essence of all instructions. Manasiksha Raghunath Goswami has said, Guru Goste Gostale Susu Jani Gusuru Gane Swamantra Sri Namne Brajanavayu Vedanga Sarane. Oh my dear brother mind, mantra, don't forget the mantra given by the spiritual master, that this mantra is called Trisandha. It should be chanted three times a day, in the middle, in the morning, at lunchtime, in the afternoon. How Mahaprabhu did, Mahaprabhu would take bath three times a day and perform his anik. Even though the Goswamis were on such a high platform, they were also doing. So Gurudev says, I cannot think how many are really doing this by mind. Very rare personalities.
Attentively.
Who are doing these mantras attentively? Very few people. Therefore, one should have deeper attraction towards Guru. Guru means here Diksha Guru and Shiksha Guru. One should have deep attraction towards Goste. That means the places where the eternal associates, like Nandi Yasoda, are always living. One should have attraction towards the eternal perfected associates or residents of the Holy Dome. One should have deep respect towards Sujani. Means those Vaishnavas who may be in other sampradayas, but we respect them by mind. Bhusuda means the Brahmanas. They may not be completely in the line of Sudha Bhakti, but anyhow, they have some regard for Bhakti. We should respect them also. And one should have deep attraction to the mantra given by Gurudev, and of course, the holy name. Therefore, deep attraction in the heart, one should worship Sri Radha and Krishna. In the second verse, Raghunath Das Goswami said, who is Mahaprabhu, Sachi Suno, Nandiswara Pate? One should remember that Sachi Suno, the son of Mother Sachi, he is no one else but Sri Krishna. And remember that Gurudev is very, very dear to Mukunda. So one who follows all these instructions, that person can cross Maya and that person can achieve Prema.
Hare Krishna. Call the house